एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
और मैं भी आपके साथ हूँ। नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहूंगा कि जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, वर्जीनिया बेरिज की किताब है पब्लिक हेल्थ।
बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ बीमारियों या मेडिकल हिस्ट्री की किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा समाज, हमारी राजनीति और स्वास्थ्य के बारे में हमारी समझ, ये सब आपस में कैसे गुथे हुए हैं
और समय के साथ कैसे बदलते रहे हैं, ये भी।
हाँ।
और देखिए ना, ये विषय आज कितना रेलेवेंट है ना।
बहुत ज्यादा।
पिछले कुछ साल ही देख लें, महामारी का मैनेजमेंट, लॉकडाउन सही था गलत था, वैक्सीन पर बहसें,
और वो लाइफस्टाइल वाली बीमारियां भी तो हैं, डायबिटीज, मोटापा।
हाँ, उनसे कैसे निपटें, सरकार कितना दखल दे, कहां तक व्यक्तिगत आजादी है और कहां से सामूहिक भलाई शुरू होती है।
सही कहा। ये सारे सवाल तो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं।
तो बेरिज की किताब वो हमें एक तरह का हिस्टोरिकल लेंस देती है ना।
बिल्कुल, एक नजरिया देती है कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं गिनाती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है।
चलिए तो फिर शुरू करते लेखिका से ही। वर्जीनिया बेरिज कौन है?
देखिए, वर्जीनिया बेरिज एक जानी मानी ब्रिटिश इतिहासकार है और साथ ही पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की एक्सपर्ट भी।
और वो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, मतलब LSHTM, वहाँ प्रोफेसर हैं।
हाँ, जो कि इस फील्ड में दुनिया की टॉप संस्थाओं में से एक है।
लेकिन उनकी खास बात क्या है, मतलब उनका अप्रोच अलग कैसे है?
खास बात ये है, और ये बहुत जरूरी है समझना, कि वो पेशे से डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं है, वो इतिहासकार है।
अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
इससे उन्हें एक अलग, एक बाहरी नजरिया मिलता है। वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम और उसके दावों को एक क्रिटिकल एंगल से देख पाती हैं।
मतलब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं,
कह सकते हैं। और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो खास तौर पर उन मुद्दों के इतिहास में है जो हमेशा से थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं।
जैसे कि?
जैसे धूम्रपान, शराब, ड्रग्स का इस्तेमाल, इन चीजों को समाज कैसे देखता आया है, कैसे नियम बने हैं।
हाँ, मैंने सुना है उनकी एक और किताब थी ओपियम एंड द पीपल।
बिल्कुल, वो इसी चीज को देखती हैं कि कैसे साइंटिफिक एविडेंस, समाज का डर और बिजनेस इंटरेस्ट्स, ये सब मिलकर किसी मुद्दे पर पब्लिक का नजरिया बनाते हैं और बदलते भी हैं।
तो उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात में है कि वो एकदम सख्त हिस्टोरिकल एनालिसिस उस फील्ड पर लागू करती हैं जो अक्सर खुद को एकदम प्योर साइंस की तरह पेश करता है।
सही, वो दिखाती हैं कि विज्ञान तो है लेकिन पब्लिक हेल्थ हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से, मतलब, घिरा रहा है, प्रभावित होता रहा है।
तो अब आते हैं किताब के मेन आइडिया पे। बेरिज का सबसे बड़ा तर्क क्या है इसमें?
उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये कि जिसे हम पब्लिक हेल्थ या सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से एक जैसी रही हो या कोई पत्थर की लकीर जैसा साइंटिफिक डिसिप्लिन हो।
अच्छा, तो फिर क्या है?
बल्कि ये एक लगातार बदलने वाला, डायनामिक और अक्सर बहुत ज्यादा विवादों वाला मैदान है, सामाजिक भी, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक भी।
मतलब ये सोचना कि हम बस अज्ञान से ज्ञान की तरफ एक सीधी लाइन में आगे बढ़ते आए हैं।
हाँ, वो थोड़ा ज्यादा सिंपल सोचना हो जाएगा, असल कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
तो उनका मेन पॉइंट क्या है?
मेन पॉइंट ये है कि किसी भी जमाने में पब्लिक हेल्थ के मुद्दे क्या होंगे और उनके सॉल्यूशंस कैसे सोचे जाएंगे, ये उस टाइम की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और समाज की चिंताओं पर डिपेंड करता है।
तो किताब एक तरह से ये सवाल उठा रही है कि अलग अलग समाजों ने अपनी आबादी की सेहत को कैसे देखा, कैसे डिफाइन किया।
हाँ, और उसे सुधारने की कोशिश कैसे की। और ये पूरी कहानी हमें राज्य, नागरिक और वेलफेयर के बारे में क्या सिखाती है।
और इसमें एक जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये
कि पब्लिक हेल्थ सिर्फ जर्म्स, वायरस या आंकड़ों का खेल नहीं है।
हाँ।
ये हमेशा से पॉलिटिक्स, वैल्यूज और पावर इक्वेशन से जुड़ा रहा है।
किताब का एक कोट जैसे आपने बताया था कि ये कोई सीधी जीत की कहानी नहीं है।
हाँ बिल्कुल, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का इतिहास स्वच्छता से विज्ञान तक प्रगति का कोई विजयी मार्च नहीं है, बल्कि राजनीतिक बातचीत, आर्थिक हितों और सामाजिक चिंताओं से आकार पाने वाला एक घुमावदार रास्ता है।
ये समझने से काफी चीजें साफ हो जाती है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे 19वीं सदी में जबरन साफ सफाई करवाना,
या आज के स्मोकिंग बैन, वैक्सीन मैंडेट या मोटापे पर जो बहसें होती हैं,
ये सब इतने कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं है,
ये तय करते हैं कि समाज कैसे चलेगा, किसकी चलेगी, किसकी आजादी कम होगी।
सही। और ये समझने के लिए कि बेरीजस इस नतीजे पर कैसे पहुंची, उनका जो हिस्टोरिकल सफर है किताब में, उस पर नजर डालना बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, तो कहाँ से शुरू करती हैं वो?
शुरुआत होती है ओल्ड पब्लिक हेल्थ से, मतलब 19वीं सदी की शुरुआत का दौर,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम।
हाँ, शहर तेजी से बढ़ रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थीं, लेकिन गंदगी, भीड़ भाड़, साफ सफाई की हालत
भयानक थी
और बीमारियां फैल रही होंगी, जाहिर है।
बहुत।
तो बेरीजस कहती हैं कि जो पहला पब्लिक हेल्थ मूवमेंट शुरू हुआ वो किसी महान साइंटिफिक डिस्कवरी का नतीजा नहीं था।
अच्छा, तो फिर?
वो सोशल और इकोनॉमिक जरूरत से पैदा हुआ। शहरों में जो बीमारियां फैल रही थी, जो गंदगी थी, वो सिर्फ जाने नहीं ले रही थीं।
वो इकोनॉमी के लिए भी खतरा थी।
बिल्कुल, पब्लिक ऑर्डर के लिए और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो मजदूर चाहिए थे, उनकी सेहत के लिए, मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए भी खतरा थी।
उस समय लोग सोचते क्या थे, मतलब बीमारी का कारण क्या मानते थे?
उस जमाने में एक थियरी बहुत चलती थी, मायास्मा थियरी।
मायास्मा मतलब?
मतलब ये मानना कि बीमारियां गंदी हवा, बदबूदार हवा से फैलती हैं, बैड एयर।
अच्छा।
और साथ में यूटिलिटेरियनिज्म का जो फलसफा था, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर,
महत्तम लोगों का अधिकतम सुख।
हाँ, तो इसने सरकार को एक तरह का मॉरल जस्टिफिकेशन दिया कि भाई, सबकी भलाई के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जरूरी हैं, दखल देना जरूरी है।
कोई उदाहरण है इसका, कोई बड़ा नाम?
हाँ, एडविन चैडविक का नाम बहुत अहम है। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी 1842 में एक रिपोर्ट आई थी, बहुत फेमस।
हाँ, सुना है।
उसने ब्रिटेन में पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स की नींव रखी। उनका जोर बड़े पैमाने के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर था,
जैसे
सीवर सिस्टम बनाना, साफ पानी घरों तक पहुंचाना। बेरी जोर देती हैं कि ये जो पुराना पब्लिक हेल्थ था वो मेनली एनवायरमेंटल था,
माहौल सुधारो।
हाँ, सरकार का रोल बहुत बड़ा था, बहुत इंटरवेंशनिस्ट और अक्सर जबरदस्ती वाला भी होता था। लोगों के घरों में घुसकर चेक करना कि सफाई है या नहीं।
फोकस लोगों का बिहेवियर बदलने पर नहीं था।
नहीं, फोकस उनके आसपास के फिजिकल माहौल को बदलने पर था।
तो ये हुआ पुराना पब्लिक हेल्थ। फिर चेंज कैसे आया?
बड़ा चेंज आया 19वीं सदी के आखिर में, जिसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल रेवोल्यूशन।
पास्चर और कोच वाला दौर। बिल्कुल।
लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, इन जैसे साइंटिस्ट ने कमाल का काम किया। उन्होंने साबित किया कि बहुत सारी बीमारियां हवा या गंदगी से नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे अनदेखे कीटाणुओं से होती हैं, जर्म से।
जर्म थ्योरी?
हाँ, जर्म थ्योरी। ये साइंस में एक जबरदस्त लीप थी।
इसका असर तो पब्लिक हेल्थ पर बहुत बड़ा पड़ा होगा।
हाँ, असर तो बहुत बड़ा था, लेकिन बेरिज कहती हैं कि ये असर थोड़ा मिला जुला था, कॉम्प्लेक्स था।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ तो देखिए, बीमारियों को समझने, उनसे लड़ने के नए हथियार मिल गए, वैक्सीन बनी, एंटीसेप्टिक तरीके आए,
पब्लिक हेल्थ ज्यादा प्रोफेशनल हो गया होगा।
हाँ, ज्यादा प्रोफेशनल हुआ, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, उनकी पावर बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ इसने फोकस बदल दिया।
फोकस कैसे बदला?
अब ध्यान बड़े सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों से हट गया, जैसे गरीबी, हाउसिंग, इनसे हटकर फोकस लैब, वैक्सीन, माइक्रोस्कोप पर ज्यादा चला गया।
बीमारी को ज्यादा इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरह देखा जाने लगा।
एग्जैक्टली, कि ये कीटाणु आपके शरीर में घुस गया है, और इस चक्कर में कभी कभी हेल्थ के जो असली सोशल डिटर्मिनेंट्स थे,
जैसे गरीबी, कुपोषण,
हाँ, गंदा रहन सहन, जो लोगों को कीटाणुओं के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज होने लगे।
और जिम्मेदारी भी शिफ्ट हुई होगी।
हाँ, जिम्मेदारी धीरे धीरे स्टेट से, मतलब सड़कें और पानी साफ रखना, यहाँ से हटकर व्यक्ति की तरफ जाने लगी कि आप खुद को कीटाणुओं से बचाइए।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है, मतलब साइंटिफिक तरक्की ने फोकस को व्यक्ति पर ज्यादा ला दिया। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक और बड़ा शिफ्ट आया, जिसे बेरिज न्यू पब्लिक हेल्थ कहती हैं।
नया सार्वजनिक स्वास्थ्य।
हाँ, इस दौर तक आते आते जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, टीबी, कॉलरा वगैरह, वो एंटीबायोटिक्स और बेहतर सैनिटेशन से काफी कंट्रोल में आने लगी थी।
तो अब ध्यान कहाँ गया?
अब ध्यान गया उन बीमारियों पर जो लंबी चलती हैं, फैलती नहीं, मतलब क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज,
जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज।
बिल्कुल।
अच्छा, तो अब दुश्मन बदल गया था, अब कोई कीटाणु नहीं था।
सही। इसे कहा गया लाइफस्टाइल ड्रिफ्ट, मतलब जीवन शैली की तरफ झुकाव। बेरिज तर्क देती हैं कि ये जो नया पब्लिक हेल्थ था, ये मेनली दो चीजों पर बेस्ड था।
क्या थी वो दो चीजें?
एक तो एपिडेमियोलॉजी, यानी आबादी में बीमारियों के पैटर्न और कारणों की स्टडी,
और दूसरा
रिस्क का कॉन्सेप्ट, जोखिम। अब दुश्मन कोई एक जर्म नहीं था, बल्कि बिहेवियर से जुड़े रिस्क फैक्टर्स का पूरा जाल था,
जैसे स्मोकिंग, डाइट, एक्सरसाइज की कमी। स्मोकिंग का उदाहरण यहाँ बहुत फिट बैठता है ना?
हाँ, क्लासिक उदाहरण है। कैसे स्मोकिंग धीरे धीरे एक पर्सनल हैबिट से बढ़कर एक मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन गया।
वो स्टडीज भी तो थी, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, ब्रिटिश डॉक्टर स्टडी।
हाँ, ये बड़ी और लंबी चलने वाली स्टडीज थी। इन्होंने दिखाया कि कैसे कुछ आदतें या लाइफस्टाइल आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं।
तो अब इंटरवेंशन का फोकस बदल गया,
बिल्कुल
बाहरी माहौल से हटकर व्यक्ति के अंदरूनी फैसलों और व्यवहार पर चला गया।
हाँ, यहीं पर बैरिज का वो दूसरा कोट आता है, याद है?
हाँ, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का फोकस नाटकीय रूप से व्यक्ति के आसपास के वातावरण से हटकर पर्यावरण के भीतर रहने वाले व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गया है।
और आगे
हम सीवर बनाने से व्यवहार बनाने की ओर बढ़ गए हैं।
व्यवहार बनाना, इंजीनियरिंग बिहेवियर, ये फ्रेज ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
हाँ, ये दिखाता है कि इंटरवेंशन का तरीका कितना बदल गया, और ये आज की डिबेट से सीधे जुड़ता है। हमें क्या खाना चाहिए, कितनी कसरत करनी चाहिए, वजन कितना हो,
सही।
और फिर किताब हमें और आज के दौर के करीब लाती है, समकालीन चुनौतियाँ।
हाँ, वो 80s और 90s की HIV AIDS एपिडेमिक का एनालिसिस करती हैं।
ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था शायद।
बिल्कुल, वो दिखाती हैं कि एड्स पर जो रिएक्शन हुआ वो कभी भी सिर्फ मेडिकल या साइंटिफिक नहीं था, उसमें नैतिकता, लाइफस्टाइल, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब मुद्दे भी थे।
हाँ, और तथाकथित रिस्क ग्रुप्स को लेकर समाज के जो गहरे प्रेजुडिसेस थे वो सब उभर कर सामने आए।
इसने जरूर पब्लिक हेल्थ के तरीकों को चैलेंज किया होगा।
बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। सिर्फ ऊपर से ऑर्डर या इन्फॉर्मेशन देने से काम नहीं चला।
तो क्या करना पड़ा?
उन्हें हेल्थ प्रमोशन जैसे मॉडल अपनाने पड़े, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज जो लोगों को अपनी हेल्थ पर ज्यादा कंट्रोल दें।
कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट।
हाँ, इसमें जो प्रभावित कम्युनिटीज थीं उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना जरूरी हो गया, जैसे गे राइट्स ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना पड़ा। एड्स ने दिखाया कि सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर पर फोकस करने वाले मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं, कम्युनिटी और सोशल कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है।
और आज की दुनिया तो और भी ज्यादा कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड।
कैसे बीमारियां, एपिडेमिक्स अब फटाफट बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं,
जैसे हमने हाल में देखा भी।
हाँ, जिससे ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस की जरूरत बढ़ी है। और कैसे फूड हैबिट्स बदलने से ग्लोबेसिटी, मतलब मोटापे का ग्लोबल फैलना, एक बड़ी समस्या बन गई है।
और वो उन पुराने तनावों पर भी लौटती हैं जो हमेशा से रहे हैं।
कौन से तनाव?
वही स्टेट कंट्रोल बनाम इंडिविजुअल लिबर्टी, जिसे अक्सर नैनी स्टेट डिबेट कहते हैं।
जरूरत से ज्यादा टोका टाकी करने वाली सरकार।
हाँ, फिर बड़ी कंपनियों के कमर्शियल इंटरेस्ट का हेल्थ पॉलिसी पर असर, और हेल्थ में जो गहरी इनइक्वालिटीज हैं वो भी।
ये सारी बातें अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक्स हों, लाइफस्टाइल डिजीज हों, या नैनी स्टेट वाली बहस।
हाँ, सब यहाँ भी उतनी ही रेलिवेंट लगती है ना।
बिल्कुल, तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े थीम्स या कहूँ के संदेश उभरते हैं।
हाँ, क्या है वो मेन टेक अवेज?
पहला तो यही कि पब्लिक और हेल्थ, ये शब्द खुद ही बदलते रहते हैं। इनकी डेफिनेशन फिक्स नहीं है, समाज इन्हें गढ़ता है।
अच्छा, कैसे?
जैसे 19वीं सदी में पब्लिक एक भीड़ थी जिसे मैनेज करना था, साफ रखना था। 20वीं सदी के अंत तक पब्लिक बन गया ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिनके रिस्की बिहेवियर को ठीक करने की जरूरत थी।
और हेल्थ की परिभाषा भी बदली।
हाँ, पहले शायद हेल्थ का मतलब था कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, अब ये वेलबींग, गुड लाइफस्टाइल, रिस्क से बचना, ये सब शामिल हो गया है।
वो स्मोकिंग वाला उदाहरण फिर से सोचिए, एक जमाने में शान की बात, बाद में जानलेवा महामारी। समाज तय करता है कि कब कोई चीज हेल्थ प्रॉब्लम है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव गुड के बीच का वो परमानेंट टेंशन, वो खींचतान।
ये तो शायद पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री की सेंट्रल पॉलिटिकल डिवाइडिंग लाइन है।
हाँ, चाहे विक्टोरियन लंदन में घरों की जबरन तलाशी हो, या आज के वैक्सीन रूल्स, या पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन।
ये लाइन कहाँ खींची जाए, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है।
और ये डिपेंड करता है कि खतरे को कितना सीरियस माना जा रहा है और उस वक्त का पॉलिटिकल माहौल कैसा है।
भारत में भी हम ये देखते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गाड़ियों पर नियम या प्लास्टिक बैन, ये सब कहीं ना कहीं इसी टेंशन से जुड़े हैं।
हाँ, तीसरा अहम मुद्दा है हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के दो मॉडल्स के बीच का स्विंग, एनवायरमेंटल बनाम इंडिविजुअलिस्टिक।
मतलब हम बीमारी का दोष किसे दें, माहौल को या अपनी आदतों को?
सही, पुराना पब्लिक हेल्थ ज्यादातर एनवायरमेंट और स्ट्रक्चर पर फोकस करता था, गरीबी, गंदगी, बुरा आवास।
और नया पब्लिक हेल्थ?
वो मेनली इंडिविजुअलिस्टिक है, व्यक्ति की चॉइस, उसकी लाइफस्टाइल पर जोर देता है।
और बेरिज यहाँ एक तरह की वार्निंग देती है, है ना?
हाँ, वो कहती हैं कि सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल पर टिके रहने से एक खतरा है।
क्या खतरा?
विक्टिम ब्लेमिंग का। हाँ। कि हम पीड़ित को ही दोष देने लगें और हम उन बड़ी सोशल और इकोनॉमिक ताकतों को नजरअंदाज कर दें,
जैसे गरीबी, एजुकेशन की कमी, इनइक्वालिटी।
हाँ, जो असल में व्यक्ति के पास मौजूद ऑप्शंस को ही लिमिट कर देती हैं।
ये सवाल तो बहुत जरूरी है, क्या वाकई एक झुग्गी में रहने वाले के पास हमेशा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने का ऑप्शन होता है?
ये भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज्यादा रेलेवेंट सवाल है। हमें अपनी हेल्थ स्कीम्स को देखते हुए सोचना होगा कि क्या वो इन स्ट्रक्चरल इश्यूज पर ध्यान दे रही हैं या सारा जोर बस इंडिविजुअल बिहेवियर बदलने पर है।
और चौथा संदेश जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है,
वो है पॉलिटिक्स, एक्सपर्ट्स का बढ़ता हुआ अथॉरिटी और डेटा की पावर।
हाँ, बेरिट साफ कहती हैं कि पब्लिक हेल्थ को पॉलिटिक्स से अलग करके देख ही नहीं सकते।
कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम प्रायोरिटी बनेगी, इलाज बचाव पर कितना पैसा लगेगा, किसकी आजादी पर रोक लगेगी,
ये सब आखिर में पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं।
और इसमें एक्सपर्ट्स का रोल बहुत बढ़ गया, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स,
खासतौर पर एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, जो हमें बताते हैं कि क्या चीज रिस्क फैक्टर है, उनकी बात का वजन होता है।
लेकिन बेरिज याद दिलाती हैं कि साइंटिफिक एविडेंस या डेटा वो अपने आप में कुछ नहीं कहता,
उसे एक खास पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है,
और फिर किसी खास पॉलिसी या एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा पावरफुल है, पर वो कैसे कलेक्ट हुआ, कौन उसे पेश कर रहा है, किस मकसद से, ये सब बहुत मैटर करता है।
भारत में भी हम देखते हैं हेल्थ डेटा कैसे पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाता है।
किताब के कुछ आइडियाज इतने पावरफुल हैं कि उन्हें फिर से कहना जरूरी है, जैसे वो तीसरा कोट।
हाँ, कि हर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप स्वाभाविक रूप से राजनीतिक होता है, व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच एक बातचीत।
और आगे,
वैज्ञानिक रूप से कोई सही जवाब नहीं है कि वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, ये हमेशा सामाजिक मूल्यों का मामला होता है।
ये बात पब्लिक हेल्थ को डिमिस्टिफाई करती है ना?
हाँ, ये बताती है कि ये काम सिर्फ टेक्निकल या साइंटिफिक नहीं है, बल्कि गहरा आइडियोलॉजिकल है।
और इसीलिए लॉकडाउन, मास्क मैंडेट या शुगर टैक्स जैसे मुद्दे इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं,
क्योंकि ये बेसिक वैल्यूज और राइट्स की लड़ाई बन जाते हैं।
तो इस सारे इतिहास, इस सारे एनालिसिस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं?
कई तरीके हैं। पहला तो ये कि हम हेल्थ से जुड़ी न्यूज को ज्यादा क्रिटिकली देख सकते हैं।
मतलब
जब हम मोटापे की एपिडेमिक या किसी नई खाने की चीज के खतरों के बारे में पढ़ें, तो उसे बस एक साइंटिफिक फैक्ट मानकर एक्सेप्ट ना करें।
सवाल पूछें।
हाँ, सवाल पूछें। इसे क्राइसिस की तरह कौन पेश कर रहा है, किसके इंटरेस्ट जुड़े हो सकते हैं, क्या सारा जोर इंडिविजुअल कमी पर दिया जा रहा है, कम खाओ ज्यादा चलो।
और बड़े स्ट्रक्चरल मुद्दे अनदेखे हो रहे हैं, जैसे ताजे खाने तक सबकी पहुंचना होना या जंक फूड का सस्ता और इजीली अवेलेबल होना।
बिल्कुल। दूसरा, ये हमें बेहतर, ज्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने में मदद करता है।
पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पर जो डिबेट्स होती हैं, उन्हें समझने के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट मिलता है।
हाँ, जब कोई नेता शुगर टैक्स या ई सिगरेट बैन की बात करे, तो हम इस हिस्टोरिकल नजरिए से सोच सकते हैं, क्या ये वाकई कलेक्टिव गुड के लिए जरूरी कदम है या ये नैनी स्टेट का उदाहरण है।
और तीसरा, ये हमारे अपने हेल्थ और डिसीजंस को समझने में भी हेल्प कर सकता है।
कैसे?
ये हमें उन बड़े सोशल और कमर्शियल प्रेशर्स को पहचानने में मदद करता है जो हमारी आदतों, हमारी लाइफस्टाइल को शेप करते हैं।
अगर कोई अपने वजन या किसी और लाइफस्टाइल इश्यू से स्ट्रगल कर रहा है,
तो ये इतिहास शायद उस पर्सनल गिल्ट या फेलियर की फीलिंग को कुछ कम कर सके, क्योंकि ये दिखाता है कि अक्सर हमारा एनवायरमेंट और इकोनॉमिक फोर्सेज ही हमें अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ धकेलती हैं।
ये हेल्थ एडवाइस को भी थोड़ा शक की नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, और भविष्य की हेल्थ चैलेंजेस जैसे कोई नई महामारी, उसे समझने में भी मदद कर सकता है। लॉकडाउन पर बहसें, रिस्क को कैसे समझा जा रहा है, ये सब।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक शायद यही निकलता है
कि पॉपुलेशन हेल्थ कभी भी सिर्फ एक टेक्निकल या मेडिकल इशू नहीं है।
नहीं, ये समाज के ताने बाने में, मतलब सोसाइटी के फैब्रिक में गहराई से बुना हुआ एक कॉम्प्लेक्स, मैसी और बहुत ही ह्यूमन मामला है।
हमें प्रोग्रेस की जो सिंपल कहानियां सुनाई जाती हैं, उन पर थोड़ा शक करना चाहिए,
और उन हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ताकतों को समझना चाहिए जो हमारी कलेक्टिव हेल्थ को बनाती बिगाड़ती हैं। कॉन्टेक्स्ट जैसा आपने कहा ही सब कुछ है।
और एक परमानेंट इंसाइट ये है कि हेल्थ पॉलिटिकल है हमेशा।
और वो टेंशन इंडिविजुअल बनाम एनवायरमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाम स्ट्रक्चरल फोर्सेस, वो हमेशा बना रहेगा। वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है मॉडर्न पब्लिक हेल्थ का।
और आज की और कल की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें हिस्ट्री से सीखना ही होगा। ये किताब सिर्फ ये नहीं बदलती कि आप पब्लिक हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं,
बल्कि ये भी बदल सकती है कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। सवाल पूछना सिखाती है, सतह के नीचे देखना सिखाती है।
वाकई एक जरूरी और आंखें खोलने वाली पड़ताल।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।